एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सभी का।
तो आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलेंगे, एक ऐसे दस्तावेज समूह पर बात करेंगे जिसने न सिर्फ एक देश की बल्कि शायद दुनिया भर में लोकतंत्र की सोच पर गहरा असर डाला है। हम बात कर रहे हैं द फेडरलिस्ट पेपर्स की।
बिल्कुल, और ये सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये आज भी उतने ही काम के हैं।
हाँ, ये बात सही है। ऐसा क्यों लगता है आपको?
देखिए, ये जो 85 निबंध है ना, ये उन सवालों से जूझते हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। सरकार कैसे चले, पावर कैसे बैलेंस हो, समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग हित हैं, जिन्हें वो फैक्शंस कहते थे, उनको कैसे मैनेज किया जाए।
मतलब ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है।
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत तो किसी भी लोकतंत्र, किसी भी बड़े संगठन को समझने में मदद करते हैं। ये बहुत बुनियादी सवाल है।
सही बात है। तो फिर इनके पीछे दिमाग किसका था? सुना है लेखकों ने अपना नाम छुपाया था।
हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। नाम इस्तेमाल किया पब्लियस, ये रोम के एक पुराने लीडर के सम्मान में था। लेकिन लिखने वाले तीन लोग थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन और जॉन जे।
और तीनों ही अपने अपने फील्ड के महारथी थे, है ना?
बिल्कुल, कमाल का कॉम्बिनेशन था। देखिए, हैमिल्टन थे एक्शन वाले हीरो, बाद में पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी बने। वो चाहते थे एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर पैसे और डिफेंस के मामलों में। सबसे ज्यादा, करीब 51 निबंध उन्होंने ही लिखे।
और मैडिसन, उन्हें तो संविधान का पिता भी कहते हैं।
हाँ, जेम्स मैडिसन, वो थे सिद्धांतकार, पॉलिटिकल थ्योरी के ज्ञाता। संविधान बनाने में उनका बड़ा हाथ था, और वो इंसान के नेचर को लेकर बड़े रियलिस्टिक थे। मानते थे कि सिस्टम ऐसा बनाओ कि गलतियां कम हो। उनके लिखे फेमस निबंध है नंबर 10, फैक्शंस पर, और नंबर 51, शक्तियों के बंटवारे पर। उन्होंने लगभग 29 लिखे।
और तीसरे थे जॉन जे।
जी, जॉन जे, वो अनुभवी डिप्लोमैट थे, बाद में पहले चीफ जस्टिस भी बने। विदेश नीति पर उनकी पकड़ मजबूत थी। बीमार होने की वजह से सिर्फ 5 ही निबंध लिख पाए, पर उनमें उन्होंने बाहरी खतरों और साथ रहने की जरूरत पर जोर दिया।
तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं लिख रहे थे, ये प्रैक्टिकल लोग थे जो संविधान बना भी रहे थे और उसका बचाव भी कर रहे थे।
एकदम सही, यही चीज इन पेपर्स को और ज्यादा वजनदार बनाती है। वो जमीनी हकीकत जानते थे।
तो थोड़ा और समझते हैं, ये फेडरलिस्ट पेपर आखिर हैं क्या? मतलब 85 निबंधों का कलेक्शन ये तो पता चला, पर इनका मकसद क्या था?
देखिए, साल था 1787-88, अमेरिका का नया संविधान बन चुका था, पर उसे लागू होने के लिए राज्यों की मंजूरी चाहिए थी। न्यूयॉर्क एक बहुत जरूरी राज्य था और वहां इसके खिलाफ काफी आवाजें थीं। तो ये निबंध न्यूयॉर्क के अखबारों में छापे गए। सीधा मकसद था न्यूयॉर्क की जनता को राजी करना कि वो इस नए संविधान को अपना लें, रेटिफाई कर दें।
अच्छा, तो ये एक तरह का पॉलिटिकल कैंपेन था।
हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बन गया। ये सिर्फ उस वक्त की जरूरत नहीं थी, ये अमेरिकी सरकार के पीछे की सोच, उसके फलसफे पर सबसे गहरी टिप्पणी बन गए।
और इनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? मतलब क्या कह रहे थे ये?
उनका मूल तर्क ये था कि जो पुराना सिस्टम था, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, वो बुरी तरह फेल हो चुका है, वो कमजोर है, देश को साथ नहीं रख सकता। और जो नया संविधान है, वही अमेरिका के लोगों की आजादी, सुरक्षा और तरक्की के लिए सबसे अच्छा रास्ता है।
तो ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड थी।
एक तरह से पहले उन्होंने दिखाया कि पुराना सिस्टम क्यों नाकाम है, अलग होने के क्या खतरे हैं। फिर उन्होंने नए संविधान की हर चीज, संसद, राष्ट्रपति, अदालतें को समझाया, बताया कि कैसे इनको पावरफुल भी बनाया गया है और कैसे इन पर लगाम भी कसी गई है, ताकि ये अपनी मनमानी ना कर सकें।
और ये सब हवा में नहीं था, आपने कहा इतिहास से उदाहरण दिए।
हाँ बिल्कुल, वो राजनीति के बुनियादी सवालों से जूझ रहे थे। सत्ता में बैठे लोगों की महत्वाकांक्षा को कैसे कंट्रोल करें, माइनॉरिटी के अधिकारों को मेजॉरिटी से कैसे बचाएं, सरकार को ताकतवर भी बनाना है और आज़ादी भी बचानी है, ये कैसे होगा। इन सब के जवाब के लिए उन्होंने ग्रीस, रोम, यूरोप के इतिहास से सबक लिए। कोशिश थी कि सरकार जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सोच समझ और चुनाव से बने।
चलिए, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इनके मुख्य विषय क्या थे? पहला आपने बताया यूनियन का महत्व।
हाँ, निबंध 1 से 14 इसी पर है। हैमिल्टन ने निबंध एक में तो सीधा कहा कि ये इंसान की क्षमता का इम्तिहान है कि वो अच्छी सरकार बना भी सकता है या नहीं।
और जॉन जे ने विदेश नीति का एंगल दिया।
जी, निबंध 2 से 5 में उन्होंने समझाया कि एक होकर ही बाहरी खतरों से बच सकते हैं, अच्छी संधियां कर सकते हैं, आपस में लड़ने से बच सकते हैं।
और हैमिल्टन ने इतिहास का हवाला दिया
निबंध 6 से 9 में कि कैसे इतिहास गवाह है, अलग अलग राज्य आपस में लड़ते ही हैं, यूनियन ही इसका इलाज है।
और फिर आता है वो सबसे फेमस निबंध 10 मैडिसन का, फैक्शंस वाला।
हाँ, फैक्शंस यानी गुट, ऐसे ग्रुप जिनका अपना कोई स्वार्थ या जुनून होता है, जो बाकी समाज या दूसरों के अधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं। मेडिसिन ने कहा कि आप गुट बनने के कारण नहीं मिटा सकते, क्योंकि उसके लिए तो आज़ादी ही खत्म करनी पड़ेगी।
तो फिर हल क्या है?
हल है उनके असर को कंट्रोल करना। और यहीं पर मेडिसिन ने वो कमाल की बात कही कि एक बड़ा फैला हुआ गणराज्य असल में छोटे गणराज्य से बेहतर है गुटों को कंट्रोल करने में।
ये थोड़ा उल्टा लगता है ना, बड़ा देश तो संभालना मुश्किल होगा।
हाँ, यही तो क्रांतिकारी बात थी। उनका तर्क था कि बड़े देश में इतने अलग अलग तरह के हित और पार्टियां होंगी कि किसी एक गुट के लिए बहुमत बनाकर दूसरों पर जुल्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विविधता ही एक तरह की सुरक्षा बन जाएगी। ये सचमुच एक अहा मोमेंट था उस जमाने के लिए।
वाह, और इसके बाद उन्होंने पुराने सिस्टम की कमियां गिनाई।
नतीजा, राष्ट्रीय अपमान।
और फिर इतिहास के उदाहरण।
हाँ, निबंध 1820 में ग्रीस, नीदरलैंड्स, जर्मनी के फेल हुए संघों की कहानियां। फिर 21-22 में कमियों का सार, न पावर, न न्यायपालिका, न व्यापार कंट्रोल करने की क्षमता। साफ था कि बदलाव जरूरी है।
तो फिर नई सरकार को कौन कौन सी शक्तियां चाहिए, इसका बचाव किया गया होगा?
जी, निबंध 23 से 36 इसी पर है। हैमिल्टन ने जोर दिया कि देश की रक्षा के लिए केंद्र को मजबूत होना होगा, स्थायी सेना भी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि खतरे कभी भी आ सकते हैं।
और टैक्स का मुद्दा, वो तो हमेशा ही विवादास्पद रहता है।
हाँ, निबंध 30 से 36 में हैमिल्टन ने फेडरल टैक्सेशन पावर का जबरदस्त बचाव किया। यही उन्होंने कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन का आइडिया दिया, मतलब केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने दायरे में टैक्स लगा सकें। ये जरूरी था ताकि सरकार के पास काम करने के लिए पैसा हो।
फिर संविधान के सिद्धांतों और उसकी बनावट पर बात आई होगी।
बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है निबंध 37 से 51। मेडिसन ने निबंध 39 में समझाया कि ये सिस्टम न तो पूरी तरह नेशनल है न पूरी तरह फेडरल, बल्कि दोनों का मिक्स है।
और वो शक्तियों का बंटवारा और चेक एंड बैलेंस,
निबंध 51। हाँ, निबंध 47 से 51 मेडिसन ने समझाया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को अलग रखना क्यों जरूरी है, पर सिर्फ कागज पर अलग करना काफी नहीं। निबंध 48 असली मंत्र दिया निबंध 51 में, एम्बिशन मस्ट बी मेड टू काउंटर एक्ट एम्बिशन।
महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा का प्रतिकार करना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब हर ब्रांच को ऐसे संवैधानिक शक्तियां और मोटिवेशन दो कि वो दूसरी ब्रांच को अपनी हद पार करने से रोकें। जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है कानून रोकने की, तो संसद के पास महाभियोग की शक्ति है राष्ट्रपति को हटाने की। न्यायपालिका कानूनों को असंवैधानिक ठहरा सकती है। ये एक दूसरे पर नजर रखने का सिस्टम है। ये भी एक और आहा मोमेंट है।
समझ गया। फिर उन्होंने हर ब्रांच को अलग अलग समझाया, पहले विधायिका यानी कांग्रेस।
हाँ, निबंध 52 से 66, पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 52 से 58, मेडिसन जो सीधे जनता से चुने जाते हैं 2 साल के लिए, फिर सीनेट 62 से 66, मेडिसन हैमिल्टन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है उस वक्त, 6 साल के लिए। सीनेट को एक ज्यादा स्थिर अनुभवी बॉडी के तौर पर देखा गया जो जल्दबाजी वाले फैसलों पर रोक लगा सके।
फिर राष्ट्रपति यानी एग्जीक्यूटिव।
निबंध 77 से 70, यहाँ फिर हैमिल्टन आगे आए। उन्होंने एक मजबूत, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान राष्ट्रपति की वकालत की। उनका तर्क था कि फैसले लेने और संकट में तेजी से काम करने के लिए एक व्यक्ति का नेतृत्व जरूरी है। उन्होंने उन डरों को भी खारिज किया कि राष्ट्रपति कहीं राजा न बन जाए, वीटो पावर, सेना की कमान, इन सब का बचाव किया।
और आखिर में न्यायपालिका,
निबंध 78 से 83, इसमें निबंध 78 हैमिल्टन मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी सबसे कम खतरनाक ब्रांच है। क्यों? क्योंकि उसके पास न सेना है न पैसा, सिर्फ जजमेंट है।
लेकिन सबसे कम खतरनाक होकर भी सबसे जरूरी कैसे?
क्योंकि वो ही संविधान की रक्षक है। यहीं पर हैमिल्टन ने जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत रखा कि अदालतों का ये फर्ज है कि वो देखें कि कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं, अगर है तो उसे रद्द कर दें। जजों की स्वतंत्रता के लिए उनका लाइफटाइम कार्यकाल गुड बिहेवियर के दौरान जरूरी बताया।
कमाल है। और फिर आखिरी निबंधों में क्या था?
निबंध 84 और 85, एक तरह से समापन। 84 में हैमिल्टन ने इस आलोचना का जवाब दिया कि संविधान में बिल ऑफ राइट्स क्यों नहीं है। उनका तर्क था कि संविधान खुद ही सीमित सरकार बनाता है, अलग से अधिकार गिनाना खतरनाक हो सकता है। हालांकि बाद में ये जोड़ा गया।
और 85 में फाइनल अपील?
हाँ, कि देखिए ये शायद परफेक्ट नहीं है, पर अभी यही बेस्ट ऑप्शन है, इसे अपना लीजिए, बाद में सुधार कर सकते हैं।
तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें, वो बड़े आइडियाज क्या हैं जो आज भी गूंजते हैं? पहला तो आपने बताया इंसान के स्वभाव को लेकर रियलिज्म।
हाँ, कि लोग फरिश्ते नहीं होते, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा होती है, इसलिए सिस्टम में चेक जरूरी है। इफ मेन वर एंजल्स वाली बात।
दूसरा वो फैक्शंस वाला खतरा, और मेडिसिन का आइडिया कि बड़ा गणराज्य बेहतर है।
बिल्कुल, और ये भारत जैसे विविध देश के लिए कितना प्रासंगिक लगता है ना। यहाँ इतनी विविधता है कि शायद इसीलिए कोई एक गुट हावी नहीं हो पाता।
तीसरा वो मैकेनिज्म शक्तियों का बंटवारा और चेक एंड बैलेंस। एम्बिशन मस्ट काउंटरएक्ट एम्बिशन।
हाँ, ये तो सरकारों से लेके कंपनियों तक हर जगह दिखता है कि कैसे अलग अलग हिस्से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं।
चौथा संघवाद यानी फेडरलिज्म, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा।
जी, जिसे उन्होंने आज़ादी की डबल सिक्योरिटी कहा था। भारत में हम केंद्र राज्य संबंधों की बहस में इसे रोज देखते हैं।
पांचवा एक ऊर्जावान सरकार की जरूरत, खासकर मजबूत एग्जीक्यूटिव।
हाँ, ताकि सरकार पंगु ना हो, फैसले ले सके, काम कर सके, लेकिन उस पर लगाम भी हो, ये बैलेंस अहम है।
और छठा संविधान की सर्वोच्चता और जुडिशियल रिव्यू,
कि संविधान सबसे ऊपर है और अदालतें उसकी रक्षा करेंगी। ये आज के बहुत से लोकतंत्रों की नींव है।
कुछ कोर्ट्स भी थे जो इन आइडियाज को पकड़ते हैं?
हाँ, कई हैं, जैसे वही निबंध 51 से, यदि मनुष्य देवता होते तो किसी सरकार की आवश्यकता नहीं होती। ये बताता है कि हमें सरकार और कंट्रोल क्यों चाहिए।
और उसका हल भी वहीं से, महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा का प्रतिकार करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करनी छोड़।
फिर निबंध 10 में गणराज्य की परिभाषा, एक गणराज्य जिसमें प्रतिनिधित्व की योजना होती है, ये बड़े गणराज्य वाले तर्क का आधार है।
और शक्तियों के एक जगह जमा होने का खतरा, निबंध 47 से, सभी शक्तियों का एक ही हाथों में जमा होना अत्याचार की परिभाषा कहा जा सकता है।
और इन सब का मकसद निबंध 51 से, न्याय सरकार का अंत है या नागरिक समाज का अंत है, यानी सारा सिस्टम न्याय के लिए है।
तो ये सब बातें जो 230 साल पहले लिखी गईं, आज कैसे काम आती हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में?
देखिए, सबसे पहले तो आज की पॉलिटिक्स और डिबेट्स को समझने में मदद मिलती है। जब हम केंद्र राज्य, प्रेसिडेंट पावर, कोर्ट्स के रोल पर बहस सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मुद्दे नए नहीं हैं, इनके पीछे एक इतिहास है, एक तर्क है।
और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में भी।
बिल्कुल, संगठनों के डिजाइन में, जैसे कंपनियों में सीईओ और चेयरमैन को अलग करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना, ये सब पावर को बैलेंस करने के तरीके हैं जो कहीं ना कहीं फेडरलिस्ट सोच से मिलते हैं।
और बहस करने का तरीका भी।
हाँ, ये तर्कपूर्ण बहस और संवाद का बेहतरीन उदाहरण है। कैसे अपनी बात रखें, सबूत दें, विरोधी के तर्क का सम्मान करते हुए जवाब दें, आज के शोर शराबे वाले माहौल में ये सीखना बहुत जरूरी है।
और विविधता, मेडिसिन की बात।
हाँ, विविधता को मैनेज करना, उनका आइडिया कि विविधता चुनौती ही नहीं ताकत भी हो सकती है अगर सही स्ट्रक्चर हो, ये टीम्स में, कम्युनिटीज में, हर जगह लागू होता है। सबको साथ लेकर चलना, समझौते करना,
और अंत में शायद सत्ता पर एक सवालिया नजर रखना।
बिल्कुल, सत्ता के प्रति एक स्वस्थ संदेह है, ये हमें याद दिलाता है कि कहीं भी किसी भी तरह की अनियंत्रित शक्ति खतरनाक हो सकती है, नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, आपके लिए सबसे खास बात क्या रही?
मेरे लिए शायद वही इंसान के स्वभाव को लेकर उनकी गहरी समझ। उन्होंने मान लिया कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें सिस्टम ऐसा बनाना है जो इस हकीकत के साथ काम कर सके, न कि किसी आदर्श दुनिया के भरोसे रहे। ये डिजाइन पर फोकस, न कि सिर्फ अच्छे नेताओं की उम्मीद पर, मुझे बहुत प्रैक्टिकल और टिकाऊ लगता है। आपका क्या ख्याल है?
मेरे लिए वो मेडिसिन का निबंध 10 वाला आइडिया ही सबसे क्रांतिकारी है, कि बड़ा होना, विविध होना कमजोरी नहीं बल्कि स्थिरता की ताकत बन सकता है। ये सोचना कि इतनी सारी अलग अलग आवाजें मिलकर एक ज्यादा स्थिर सिस्टम बना सकती हैं, ये आज भी बहुत पावरफुल लगता है।
सही बात है, ये दिखाता है कि अच्छा शासन बनाना एक कला भी है और विज्ञान भी।
बिल्कुल, एक सोचा समझा प्रयास।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।